नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं हूं कनकलता।
दोस्तों, आज हम आपके समक्ष 16 से 28 फरवरी का अंक लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आम बजट 2025-26 भी दीर्घकालिक सोच और विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ विकास को निरंतरता देने वाला है। ये आदर्श रूप से वित्तीय और निवेश केंद्र के लिए एक प्रवेश द्वार बनने की नए भारत की तैयारी है, ताकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को पूरा किया जा सके।
दूरदृष्टि से पेश किए गए अभूतपूर्व ऐतिहासिक आम बजट ने समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त किया है और यही इस बार के हमारे अंक की आवरण कथा बनी है, जिस पर हम आपसे कार्यक्रम की पिछली कड़ी से चर्चा कर रहे थे। 21वीं सदी का तीसरा दशक विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है,
और ऐसे में बीते लगभग 11 साल में केंद्र सरकार ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का आधार स्तंभ तैयार कर नव निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पिछला आम बजट इस दशक के अंत तक की सोच को ध्यान में रखकर बनाया गया था, तो 18वीं लोकसभा का ये आम बजट उसी निरंतरता की दिशा में है, क्योंकि समग्र दृष्टिकोण के साथ पूर्ण रूपेण विकास ही अब केंद्र सरकार का मंत्र है।
18वीं लोकसभा का दूसरा और वर्ष 2025-26 का सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी आम बजट विकसित भारत के विराट और निर्णायक संकल्प को साकार करने की निरंतरता का प्रतीक बन गया है।
दोस्तों, एक समय था जब आम बजट को सिर्फ वित्तीय दस्तावेज के तौर पर साल भर का लेखा जोखा भर माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद से ये वित्तीय विवरण पेश करने की संवैधानिक जरूरत भर नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की दीर्घकालिक सोच के साथ इसे निरंतरता का प्रतीक वाला दस्तावेज बना दिया गया है। विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच का तो परिणाम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट 2047 के विकसित भारत के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करने वाला दस्तावेज बन गया है। इसके लिए वर्तमान सरकार मिशन मोड में भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। इनोवेशन, समावेशन, निवेश, ये सरकार की आर्थिक गतिविधि के रोडमैप का आधार रहा है,
और इसीलिए इस बार का आम बजट विकसित भारत की इन 5 आकांक्षाओं पर आधारित है। पहला, विकास में तेजी लाना। दूसरा, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। तीसरा, निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालना। और चौथा, परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना। और पांचवा, भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च शक्ति को और बढ़ाना।
इसके लिए अपने बजट संबोधन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने महान तेलुगु कवि और नाटककार गुराजादा अप्पाराव की पंक्तियों को उद्धृत किया, जिसका अर्थ है, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है। इसके अनुरूप विकसित भारत के लक्ष्य में शामिल है गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान।
इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। ये 10 क्षेत्र हैं। पहला, कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना। दूसरा, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। तीसरा, समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना। चौथा, भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना। तथा पांचवा, एमएसएमई को सहायता देना।
छठा, रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना। सातवा, जनता, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना। आठवा, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना। नौवा, निर्यात को बढ़ावा देना। और दसवां, इनोवेशन को पोषित करना। इस रोडमैप के साथ केंद्र सरकार का ये आम बजट वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की तैयारियों का बजट बन गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो ये पीपुल्स यानी जनता जनार्दन का बजट बन गया है। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है, वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए तक होने से उन्हें और ज्यादा मदद मिलेगी।
18वीं लोकसभा भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना है। करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आई और तीसरी पारी का पहला पूर्ण बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश इसे भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देख रहा है। इस जन विश्वास का ही परिणाम है कि केंद्र सरकार साहसिक निर्णयों से विकास को गति दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में समयबद्ध डिलीवरी को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस बार के आम बजट में समयबद्ध तरीके से जल जीवन मिशन के विस्तार सहित 9 मिशन की घोषणा की गई है।
जी हाँ, और दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 वर्षीय मिशन लिया गया है, तो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का ऐलान कर दिया गया है। 5 वर्षों के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा बजट में की गई है, तो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन मेक इन इंडिया का ऐलान हुआ। इसी तरह परमाणु ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, निर्यात संवर्धन मिशन का ऐलान किया गया और इसके अलावा जल जीवन मिशन का विस्तार वर्ष 2028 तक किया गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है, लेकिन मैं 2 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। 1, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है।
श्रोताओं, इस बजट में नागरिकों को झोली भरकर सौगातें मिली हैं। पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई है। यानी यदि किसी ने रिटर्न गलत फाइल किया हो या फाइल करना रह गया हो तो वो अब इस गलती को 4 साल के अंदर अपडेट रिटर्न फाइल करके ठीक कर सकेंगे। मकान किराए से होने वाली आय पर TDS की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई है।
वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। अब 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। वहीं सरकार ने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नियमों में बदलाव करते हुए भी राहत दी है। टेक्निकल या प्रोफेशनल फीस, कमीशन, ब्रोकरेज, किराए, विदेश भेजी गई रकम पर TDS और TCS की कटौती सीमा बढ़ा दी गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम के जरिए विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने की सीमा अब 10 लाख रुपए होगी, जो अभी 7 लाख रुपए है। हालांकि ये छूट तभी मिलेगी जब ये पैसा किसी वित्तीय संगठन यानी बैंक आदि से ऋण के तौर पर लिया गया हो।
दोस्तों, कई बुजुर्गों के पास बहुत पुराने नेशनल सेविंग स्कीम के खाते हैं जिन पर ब्याज नहीं दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि जो लोग 29 अगस्त 2024 या उसके बाद NSS से पैसा निकालेंगे उन्हें निकासी पर टैक्स नहीं देना होगा।
पेंशन स्कीम एनपीएस वात्सल योजना में निवेश करने वालों को 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ये लाभ वात्सल्य खाता खुलवाने पर ATCCD-1B के तहत मिलेगा। ये लाभ ATC के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट के अतिरिक्त होगा। ये लाभ केवल पुरानी कर व्यवस्था अपनाने वाले ही उठा सकेंगे। छोटे धर्मार्थ संस्थाओं की पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष कर ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया गया है।
जी हाँ, और स्व अधिवासित दो घरों पर टैक्स राहत दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो घर हैं और आप दोनों ही घरों में रहते हैं, तो अब आप दोनों संपत्तियों पर टैक्स का फायदा ले सकेंगे। पहले टैक्स राहत सिर्फ एक घर पर मिलती थी।
बैंक FD पर मिलने वाले ब्याज पर TDS कटौती की सीमा को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। हालांकि इसका लाभ सामान्य गैर वरिष्ठ लोगों को ही मिलेगा। इतना ही नहीं, सरकार इसी बजट सत्र में इनकम टैक्स पर नया विधेयक ला रही है। इससे टैक्स सिस्टम को ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसका मकसद करदाताओं को बेवजह नोटिस और परेशानियों से बचाना है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके साथ ही KYC प्रक्रिया भी आसान की जाएगी, जिससे बैंक और अन्य वित्तीय कामों में कम कागजी झंझट होगा। ये 1961 के आयकर कानून की जगह लेगा।
समाज के विकास का आधार महिलाओं का सशक्तिकरण है। इनका आर्थिक सशक्तिकरण विकास को प्रोत्साहन देता है, शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को बढ़ावा देती है, और उनका नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है, और उनकी आवाजें सकारात्मक परिवर्तन को भी प्रेरित करती हैं। जी हाँ, और इसीलिए इस बजट में 5 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को पहली बार व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी।
महिलाओं के नेतृत्व में विकास के दिशा में वर्तमान केंद्र सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हर स्तर पर उसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। यही वजह है कि 2025-26 के बजट में जेंडर बजट पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में की गई ये वृद्धि महिलाओं के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण दो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा समृद्धि का आधार है।
दोस्तों, भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका मकसद बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण को कम करना है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषण दिया जाता है। करोड़ों महिला बच्चे और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य और संपूर्ण पोषण सुनिश्चित कर रहे सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए बजट में बढ़ोतरी भी की गई है।
अगर इस आम बजट को चंद शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो ये एक लोक कल्याणकारी और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रति समर्पित दूरदर्शी बजट है। ये गांव, गरीब, किसान, नारी शक्ति, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। ये बजट 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए समर्पित दृष्टिकोण का परिचायक बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। दोस्तों, हमें रहता है आपके सुझावों का इंतजार। धन्यवाद। मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं हूं कनकलता।
नमस्कार।